हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। धन्यवाद करते हैं इस स्थान स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संचालकों का जिन्होंने अडल्ट एजुकेशन के लिए इवनिंग में हमको अवसर दिया है, कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, वी आर एजुकेशनल मूवमेंट। हम एजुकेशनल मूवमेंट हैं, और मूवमेंट का मतलब है कि हम मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन देने के लिए। एजुकेशन देने के लिए जगह जगह हम जहां जहां एजुकेशन का अर्थ आज सुबह हम बता रहे थे, एजुकेशन का अर्थ है जो अंदर में टैलेंट है उसको बाहर निकालना। एजुकेशन की जो जहां से जिस लैंग्वेज में अंग्रेजी से यहां आया है, टू ब्रिंग आउट। और हमारे वैदिक साहित्य में इसके लिए शब्द है, वैसे साधारण रूप से विद्या, जो अविद्या का नाश करे। विद्या का विशेष उद्देश्य है अविद्या का नाश करे। इसका मतलब है कि विद्या पहले से अंदर है, सिर्फ अविद्या को हटानी है, तो उसमें भी अंदर जो है उसको बाहर निकालना है। और वैसे भी कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल टीचर। कृष्ण यूनिवर्सल टीचर जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। और प्रभुपाद जी जब गए थे तो उनके पासपोर्ट में लिखा हुआ था टीचर, प्रोफेशन में उनके पासपोर्ट में जो प्रोफेशन लिखा था वो टीचर था। तो बेसिकली एजुकेशन के दो विभाग हैं, एक एजुकेशन जो शरीर के चलाने के लिए आवश्यक है, और एक एजुकेशन जो अपने आप को पहचानने के लिए और अपने स्वयं के स्वाध्याय के लिए, स्वयं के अध्ययन करने के लिए। अध्ययन तो एजुकेशन को अध्ययन ही कहते हैं, अध्ययन करना। तो प्रायः जो एजुकेशन सामान्य रूप से आजकल प्रचलित है, वो एजुकेशन बेसिकली प्रोफेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, है प्रोफेशन ओरिएंटेड है कि भाई आपको आगे चल के अपना जीवन किस काम में लगाना है। आपको अपना जीवन किस काम में लगाना है ये तो है प्रोफेशनल एजुकेशन, लेकिन आप कौन हो ये एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। आपको एजुकेशन में लगा, आपको कौन से प्रोफेशन में लगाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना, इलेक्ट्रिशियन बनाना, कुछ भी आप सोच लो, ये आपको बनाना है किसी प्रोफेशन में, लेकिन आप कौन हो ये एजुकेशन प्रायः मॉडर्न जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें नहीं है। नहीं है। इसका परिणाम क्या हुआ है, इसका रिजल्ट आउटकम क्या आया है? एक रेट रेस शुरू हो गई है, एक ऐसी रेस शुरू हो गई है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक को दबा के दूसरे को आगे बढ़ने की ऐसी रेस हो गई है। उसमें जो उद्देश्य है एजुकेशन का वो समाप्त हो गया। बैलेंस की जरूरत है, एजुकेशन में बैलेंस की जरूरत है। अरे कृष्णा, किस चीज का अभाव हुआ है? जो मटीरियली प्रोफेशनल ओरिएंटेड एजुकेशन, उसमें एक चीज की, किस चीज का अभाव प्रेजेंटली हुआ है सामान्य समाज के अंदर, कोई बता सकता है? कोई चीज का अभाव हो गया है एजुकेशन के बाद भी, असंतुष्टि का इस इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है और असंतुष्टि है और जो मॉरलिटी है उसमें बहुत ज्यादा नीचे की ओर गिरावट आई है, डिक्लिनेशन है। आप तो सब पेरेंट हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि मॉरलिटी में, बच्चों के चरित्र में या गुण में जो उनके अंदर होना चाहिए एक, वैसे विद्या की पुरानी डेफिनेशन जो मॉरल डेफिनेशन विद्या की है, विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो कि हमको क्या सिखाए, विनयम, निम्रता। तो क्या आजकल हमारे बच्चे जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं उसमें निम्रता आई है? आपके अपने घरों में बच्चे हैं, निम्रता है उनमें? हाँ नहीं, सब सहमत हैं कि नहीं है। और भगवत गीता में ज्ञान का पहला लक्षण है अमानीत्वम। ज्ञान मतलब एजुकेशन, जानकारी, उसका पहला लक्षण है अमानीत्वम। उसके आधार के ऊपर नीति शास्त्र में लिखा विद्या ददाति विनयम, इफ यू आर एजुकेटेड यू मस्ट बी वेरी हम्बल। ज्ञान विज्ञान, भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तो एक जनरल है, आर्मी का मैन है। कहां था मैं, एक बार मेरठ में था, वहां आर्मी के जनरल साहब आए हुए थे तो कहने लगे ये भगवद गीता महाराज हम आर्मी के लिए है। ये तो अर्जुन को सुनाई थी, युद्ध भूमि में सुनाई थी। ये जो भगवद गीता का संदेश है ये तो जर्नल एक 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 आर्मी के विशेष जर्नल अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी कि अगर अगर क्षत्रिय अपने कर्म के कर्तव्य को छोड़ देगा तो शासन का सत्यानाश हो जाएगा। आर्मी का मतलब होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब है दूसरे को क्षति पहुंचाने से बचाए, दूसरे को कष्ट से बचाए, छाता जैसे बोलते हैं ना, जो धूप से बरसात से बचाता है, ऐसे क्षत्रिय का मतलब ऐसा शासक जो अपनी प्रजा को हर संकट से बचाए। अगर उसको ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो वो ये रक्षा नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन जो भगवान ने चुन के दी वो राज ऋषियों को दी, क्षत्रिय वो जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड थे। वॉरियर का मतलब ये नहीं होता है किसी को मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला, सज्जन को बचाने वाला। तो डबल एक्शन करता है वो। तो अर्जुन को भगवान जब ज्ञान देते हैं तो कहते हैं क्या देते हैं, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। फिर तुम्हारे को कोई संशय नहीं रहेगा अर्जुन, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये विज्ञान भी है। सो अपना मुद्दा ये है आज के सत्संग का कि बेसिकली एजुकेशन जो है उसमें क्या एडिशन की जाए जो भविष्य के सिविलाइजेशन को सुरक्षा और सेटिस्फेक्शन, एक सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन और कंटेनमेंट वो हो। अच्छा, किसी को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं है? आदमी संतुष्ट कब नहीं होता है, जब उसको लोभ होता है। काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, काम क्रोध लोभ नरक के दरवाजे हैं। और काम का मतलब जो इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है उसको काम बोलते हैं, इच्छा जो कभी समाप्त ना हो। और इच्छा नहीं और इच्छा को बढ़ाता रहना लोभ है, और लोभ पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है। इन तीनों को यूनिवर्सल टीचर भगवान श्री कृष्ण ने नरक के द्वारे कहे। मरने के बाद नरक नहीं, इस दुनिया में नरक जैसा वातावरण पैदा करते हैं ये तीन चीजें। इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी प्रभावशाली है कि दुनिया नरक जैसा हो गया है, लगता है कि चमक रहा है लेकिन लोग इसके अंदर मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लोभ के कारण, काम और क्रोध के कारण। ये सच है कि झूठ है? बट बट के दुनिया टुकड़ा टुकड़ा हो रही है, कहते हैं यूनाइटेड नेशन, और डिवाइड हो रहे हैं, रोज नया टुकड़ा बन रहा है, कहीं शांति नहीं है, किसी देश के अंदर किसी घर में शांति नहीं। देश तो बहुत बड़ी बात है, घर में दो परिवार सुख से नहीं रह सकते, दो भाई सुख से नहीं रह सकते। और आध्यात्मिक के अंदर जाएंगे तो रामायण का एक ही संदेश मिलेगा कि चारों भाई एक मुट्ठी की तरह उंगली में बंद रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कभी एक दूसरे के विरोध में बोलने का कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। और ये पांच पांडव पांच उंगलियों की तरह मुट्ठी बंधी हुई रहे थे। तो ये जितने बड़े दो इतिहास जिस धरती के ऊपर उतरे, रामायण और महाभारत, जिसमें परिवारों के संगठन के बीच में न होने के कारण कितने बड़े युद्ध हुए, उतना शिक्षा के बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पाए और उसी स्थिति में अभी हैं, तो इसका मतलब हमने अभी तक अपने हित को समझा ही नहीं है। काम क्रोध लोभ ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? और इसके विपरीत तीन और चीजें हैं, यज्ञ तप दान, जो आपको इस दुनिया में सुखी कर सकते हैं, जो आपको सिक्योर सेटिस्फाइड कंटेंट बना सकते हैं, यज्ञ तप और दान। ये कितने लोग कर रहे हैं? काम क्रोध लोभ कितना प्रवेलिंग है, कितना चारों ओर छाया हुआ है, और कितना कम यज्ञ तर्प और दान हो गया है, आप अंदाजा लगा के बताइए कि ये तीन कम का चीजें कम हुई है कि नहीं हुई है। यज्ञ तप और दान, तपस्या तो किसी से होती नहीं है। तपस्या का मतलब थोड़ा सा भाई साधारण भाषा में बोलूं, स्वस्थ के लिए भी थोड़ा सा कष्ट उठा लेना कि सुबह सवेले उठ के एक आधा घंटा जाके किसी फ्रेश एयर में घूम के आना, होता है किसी से? कितना कम हो गया परसेंटेज वाइज, कितना कम हो गया बताइए। ये छोटी सी तपस्या बोल रहा हूं। तपस्या, यज्ञ का मतलब होता है कुर्बानी, अंग्रेजी में यज्ञ की परिभाषा है सेक्रीफाइस, और कुर्बानी का मतलब है जो आपका है वो किसी के ऊपर कुर्बान करना। किसके ऊपर कुर्बान करना? जिसने दिया है उसके ऊपर कुर्बान करना, इसलिए यज्ञ को विष्णु कहते हैं। तो उसके लिए कोई कार्य कर रहा है क्या? यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधना, यज्ञ अर्थ कर्मणो, सारे काम यज्ञ के अर्थ कुर्बानी के लिए करो। वैसे इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, सूर्य प्रकाश दे रहा है, कुछ ले रहा है किसी से? सूर्य किसी से कुछ मांग रहा है? प्रकाश पूरी दुनिया को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इस सृष्टि के अंदर जितने भी देवता नियुक्त है, जितने भी जो संचालक है इस मटीरियल वर्ल्ड के, वो दे रहे हैं। पृथ्वी दे रही है अनादि काल से, एक अन्न का दाना डालो तीन महीने में हजारों करके दे रही है, रिटर्न ही दे रही है। खोदो अंदर में तो पानी दे रही है, और नीचे जाओ तो तेल दे रही है। वो दूसरी बात है कि उससे आप क्या करोगे। पूरी प्रकृति दे रही है, कुछ ले नहीं रही, और केवल मानव है जो ले रहा है। उसको देना सीखना चाहिए। सेक्रीफाइस का मतलब देना सीखना। हमारा नेचर ऐसा है, छोटे बच्चे को आप कोई चीज जो उठा के मुंह में डालेगा, ऐसा है कि नहीं है? कुछ भी जो उठा के मुंह में डालेगा। ये हमारी विकृत प्रकृति ऐसी हो गई है कि सभी हमारे लिए है, पूरी दुनिया। काम की परिभाषा में वेद कहता है, अगर इस दुनिया की सारी चीजें एक आदमी को भोगने के लिए दे दी जाए, सारा धन, सारा पशु, सारी स्त्रियां भोग के लिए एक व्यक्ति को दी जाए, तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। ये मानवता की पहचान है वेद में। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, कि सब कुछ लोग तो बहुत हर चीज को कठी करके अपने पास रखते हैं, कुछ लोग बहुत दुनिया में दुखी हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण देकर कहा, एक बोरी आप चावल की जाके चौराहे के ऊपर डाल दो, अगर ऊपर से कोई पक्षी भी आएगा एक दाना अपना खाएगा और चला जाएगा, गधा भी आएगा तो पेट भर के खाएगा फिर चला जाएगा, लेकिन एक ट्रक पूरी चौहाते में डालो और आदमी को कोल हो जाए तो पहला आदमी आएगा, जितना ऊपर उठेगा उतना उठाएगा, गाड़ी साथ ले आएगा, लेकिन कुछ भी दूसरे को न मिले ऐसी व्यवस्था पहले ही करके आएगा। ये सच है कि झूठ है? पशु पक्षी किसी चीज का संग्रह नहीं करते, लेकिन मानव सब कुछ जरूरत हो न हो इकट्ठा करता है, ये लोभ है। आवश्यकता से अधिक इकट्ठे करने को लोभ बोलते हैं। अपना हित सोचो, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे का अहित तो ना करो। तो तीन चीजें कम करनी चाहिए एजुकेशन को, काम क्रोध लोभ, और तीन चीजें बढ़ानी चाहिए एजुकेशन को, यज्ञ तप और दान, तो वो एजुकेशन बैलेंस है। किस चीज की एडिशन करनी चाहिए एजुकेशन में? बेसिकली ऐसे मत समझना इसको कि जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के आधार के ऊपर, वो हमको निर्बल बनाएगी या कायर बनाएगी। फोर्टी सेवन से पहले एक नौजवान 16 साल का स्वतंत्रता के युद्ध में ब्रिटिश की रेल की जो असला जेल ले जा रही थी उसकी पटड़ी उखाड़ी, ब्रिटिश ने उसको पकड़ के फांसी की सजा देना चाहा और उसको जब कहा कि तुम अपील करो माफी के लिए, उसने बोला किसको फांसी देंगे ये, मेरे शरीर को? क्या मेरी आत्मा को ये मार सकते हैं क्या? 16 साल का बच्चा था और उसने कहा कि ये शरीर को मारेंगे ना, फांसी शरीर को देंगे ना, क्या मेरी आत्मा को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते ना, खत्म करने दो इस शरीर को, मैं दूसरा शरीर लेके आऊंगा, इनको तो यहां से उखाड़ के फेंकूंगा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या ये कायरता सिखाई थी हमारी शिक्षा आध्यात्मिक जो आत्मा के अस्तित्व की बात कर रहा है, क्या ये किसी को व्यक्ति को कायर बना रही है? और वो फांसी पे चढ़ गया, लेकिन रिजल्ट ये है यहां से अंग्रेज चला गया। और अब जितना डरपोक बच्चा पैदा हुआ है, बेसिकली कितने डरपोक बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के बारे में बताओ, कितने डरते हैं कि नहीं डरते? आध्यात्मिक एजुकेशन का अभाव, मॉरलिटी का डिक्लिनेशन, इनसिक्योरिटी, इनसिंसियरिटी, इनकंटेनमेंट, ये सारे उसका एक ही कारण है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। और अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी इंपॉर्टेंस को किसी ने नोटिस ही नहीं किया है, जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं इंटेलिजेंट कोशंट से ज्यादा स्पिरिचुअल कोशंट है। ये नई डेफिनेशन आई है, पहले आईक्यू कहते थे बच्चे का कितना है, इंटेलिजेंट कोशंट, फिर आगे आया क्या ही नहीं, इमोशनल, ई इमोशनल कोशंट, इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल। इंटेलिजेंट तो कंप्यूटर ज्यादा है, आपसे ज्यादा कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंट है, आपको याद नहीं है इतना कंप्यूटर को याद है, तो कंप्यूटर से काम चलाओ ना। बोलो नहीं, इमोशनल कोशंट, कि वो बिहेव कैसे करता है, सामने वाला आदमी जब बात करता है तो कैसे बिहेव करता है। इंटेलिजेंट आदमी तो हो, लेकिन उसको उसके इमोशनल सामने वाले के चेहरे के ऊपर क्या है ये नहीं समझ सके। ये तो कुत्ता भी, कुत्ते को भी इमोशनल कोशंट है, आप उसको मुचकार दो, प्रेम करो तो आपका पांव चाटने लगेगा और डंडा दिखाओ तो भागेगा, तो इतना तो उसको इमोशनल, तो उसको भी क्वेश्चन अच्छा है। तब तो बैठ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन एसक्यू, और मेडिकल WHO ने डेफिनेशन हेल्थ की चेंज की, पहले कहते थे बॉडी और माइंड का फिटनेस, अब कहते हैं बॉडी माइंड और स्पिरिट, एनकंपास कर रहे हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वैज्ञानिक लोग खोज के निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जहां पहले था हमारी एजुकेशन में उसका अभाव हो गया। हरे कृष्ण, बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो ये संस्था का विशेष उद्देश्य स्पिरिचुअल एजुकेशन देने का प्रयास है, वो बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए भी, सामान्य ग्रस्तों के लिए भी प्रयास कर किया जा रहा है कि बैलेंस जीवन बिताने का शिक्षा दिया जाए। बैलेंस किस चीज का? बैलेंस हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा शरीर और हमारा अपना अस्तित्व। जैसे सामान्य भाषा में कहें, गाड़ी और गाड़ी का मालिक। गाड़ी को मेंटेन करनी है मालिक के सुख के लिए, गाड़ी को मेंटेन करनी है मालिक के सुख के लिए। मालिक को छोड़ के गाड़ी को सिर्फ सजाने से कोई लाभ नहीं है। तो ये बॉडी तो गाड़ी है, इसका मालिक आत्मा है, उसके सुख के लिए इस शरीर को ठीक रखना है। लेकिन जब आत्मा का पता ही नहीं है, सिर्फ शरीर के ऊपर ही सारा हमारा, सारी हमारी जितनी भी आजकल की सुबह से शाम तक जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, जो एंडेवर्स हैं, वो सिर्फ बॉडीली स्तर के ऊपर हैं। और इसके लिए स्पिरिचुअल, जहां हम एक टाइम मैनेजमेंट का फार्मूला बताते हैं, अपने टाइम को मैनेज करो। आपके पास 24 घंटे दिन रात में सारी दुनिया के लिए इतने ही हैं, अमेरिका के वाले के लिए भी ज्यादा नहीं है, और गरीब से गरीब देश उसके लिए भी 24 ही घंटे हैं, कोई अंतर नहीं है। ये ठीक है क्या गलत है? और सारी दुनिया के लिए इन 24 घंटे में 8 घंटे उनके लिए हैं कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए सोना, खाना, पीना, उसके लिए ये 8 घंटे निर्धारित हैं। ये सही है कि गलत है? आपको 8 घंटे के अंदर सोना, खाना, पीना, नहाना, ये सब करना है। 8 घंटे आपको काम के लिए सबको देने हैं, जिससे ये शरीर चले, घर चले, परिवार चले। कितना नौकरी का घंटे कितने होते हैं? स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की नौकरी के कितने घंटे हैं? 8 है ना? 8 शरीर के लिए हो गए कि नहीं हो गए? 8 शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर परिवार के मेंटेनेंस के लिए हो गए, नहीं गए? बाकी 8 घंटे और कहां जाते हैं आपके? इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य, कोई मोस्ट कॉस्टली चीज है, वो टाइम है, और आपके जीवन का टाइम है। 1 मिनट 1 करोड़ रुपया देके खरीदा नहीं जा सकता। ये 8 घंटे हमारे किस काम के लिए है, इसको सुन लीजिए। मिनिमम मैं कह रहा हूं आधुनिक दृष्टि से, और आजकल के स्तर को देख के कह रहा हूं, 8 घंटे शरीर के लिए है। कुछ लोग बहुत आलसी है, 1 घंटा बढ़ा दो, वो नहीं उठना चाहते हैं। वो लालची हैं, लोभी हैं, काम का 1 घंटा बढ़ा दो, नहीं रह नहीं पाएंगे। 6 घंटे बाकी तो बचे, 2 घंटे पहले आत्मा के लिए निकालो, आत्मा के अध्ययन करने के लिए, पहले उसको समझने के लिए, फिर उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। 8 घंटे शरीर की जरूरत के लिए दे दिए, 2 घंटे आत्मा को समझने के लिए, उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए। 2 घंटे से भी कुछ कम अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज निकालो, नहीं तो अभी तो चल जाएगा, 15-20 साल चल जाएगा, फिर एक बल एकदम क्रम्बल होने शुरू होगा। कोई कहे कि कैसे, इसका कोई प्रमाण है क्या? इसका प्रमाण यह है कि गत 50 साल में हॉस्पिटल बढ़ी है कि कम हुई है? हाँ, अस्पतालें खुलना कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? सूरत में अस्पतालों का क्या बढ़ना बढ़ रही है कि कम हो रही है? और उद्घाटन करने के लिए मंत्री आता है कि बहुत बड़ा अस्पताल खुल रहा है, कोई अच्छा काम थोड़ी हो रहा है? कोई अच्छा काम है क्या? भाई जेल का उद्घाटन करना हो या अस्पताल का उद्घाटन करना हो, इसका अर्थ क्या है कि क्रिमिनल और रोगी लोग यहां आएंगे, तो दोनों अच्छे तो नहीं है समाज के लिए, नहीं देश के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये तो चीजें दो बढ़ रही है ना, इसका एक ही कारण है कि हमने अपने आप को हेल्थी मेंटेन करने का फार्मूला भुला दिया। और 1.5-2 घंटे जो बाकी है वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसके साथ रोज टाइम निकालो। हमने ये जो 6 घंटे अभी हमने आपको बोले, किसके? आत्मा के अध्ययन और आवश्यक उसकी जरूरत को पूरी करने के, स्वस्थ संबंधी शारीरिक व्यायाम वाक आदि उसको हमने बंद कर दिया, उसको भुला दिया, और परिवार को समय देना समाप्त कर दिया। ये सारा समय हमने कहां लगाया? लोभ, पैसा इकट्ठा करने में। चौथा हमारी जरूरत जिंदगी में है पैसा। पूछो किसे क्यों कमा रहे हो, क्या जवाब देगा? बच्चों के लिए, यही कहेगा ना। और बच्चों के पास लिए कुछ है नहीं, समय समय नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ इसका? पहले से धन ज्यादा है, पहले से घर बड़े हैं, पहले से गाड़ियां बड़ी हैं, पहले से सुविधाएं बढ़ी हैं, ये तो मानते हैं, सत्य है। लेकिन शांति चली गई है क्योंकि आत्मा का निरीक्षण छोड़ दिया। स्वस्थ चला गया है क्योंकि स्वस्थ संबंधी हमने कार्य बंद कर दिए, और परिवार टूटे हुए हैं क्योंकि परिवार को टाइम देना खत्म कर दिया। 3 चीजों की कुर्बानी देकर हमने 1 चीज को पाया है। ये सच है कि झूठ है? आप एनालिसिस करें, देखो अपने जीवन में धन तो है लेकिन शांति नहीं, स्वस्थ नहीं और संगठित परिवार नहीं। ये सत्य है कि झूठ है? तो इसका मतलब बैलेंस नहीं हुआ ना। बैलेंस होता तो हमारे पास हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, वो बैलेंस बिगड़ गया। और टाइम मैनेजमेंट का पहला फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट और मोस्ट अर्जेंट थिंग, सिर्फ अर्जेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो जिंदगी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोई बताएगा हमारे जिंदगी के में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मुख्य क्या चीज है? हाँ बेटा, अपने आप को समझना, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा जी? अपनी अपना सही स्वार्थ या स्वास्थ्य? स्वार्थ। और कोई? हमारे लिए सबसे ज्यादा मुख्य हमारा जिंदा रहना है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो दुनिया किस काम की? हम ही नहीं तो दुनिया किस काम की? क्या क्यों भाई, आपका क्या विचार है, ये सही है कि गलत है? सबसे ज्यादा मुख्य हमारा अपना जिंदा रहना है। और जिंदा आदमी और मरे आदमी में अंतर क्या है? हाँ, तो इसका मतलब है सबसे मुख्य हमारे जीवन में हमारी जिंदगी जिसके ऊपर टिकी हुई आत्मा, उसको जानने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्यों भाई, क्या विचार है आपका? ये सामान्य व्यक्ति को बताओ, उसको समझ में आ जाएगा कि हम जिंदे हैं तो दुनिया हमारे काम की, नहीं तो दुनिया किस काम की? तो जिंदे तब है जब आत्मा है, आत्मा निकलने के बाद तो जिंदगी समाप्त हो गई। और फिर अगर हम जिंदा भी हैं और स्वस्थ नहीं हैं तो ये दुनिया बेकार है हमारे लिए और हम दुनिया के लिए बेकार हैं। ये ठीक है नहीं? हम जिंदा तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है, तो न हम दुनिया के काम के हैं न दुनिया हमारे काम की है, हम दुनिया के ऊपर बोझ है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ स्वस्थ संबंध, या हमारा जीवन का जो समय है वो निकालना चाहिए कि नहीं निकाला जाए? हम स्वस्थ भी हैं लेकिन घर में शांति नहीं है तो हमारा क्या हाल होगा? जीते हैं स्वस्थ हैं लेकिन घर के अंदर सुबह शाम झगड़ा होता है तो हाल क्या होगा? और आज आज के दिन सबसे ज्यादा चिंता परिवारों में बच्चों को लेकर है। वर्ल्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है टीन सुसाइड रेट 18, 20, 21 साल के बच्चों के अंदर स्कूलों में ज्यादा हो रहा है, ये वर्ल्ड रिपोर्ट है। हाई स्ट्रेस का जो सबसे ज्यादा समय बच्चों के पास कैरियर में ये टाइम होता है जब उनको कैरियर डिसाइड करना हो रहा है, और सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है इस एज ग्रुप में। डिप्रेशन स्ट्रेस इस एज ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पूरी दुनिया में आजकल देखा जा रहा है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा उद्देश्य जीवन का है। ये बैलेंस लाइफ आदमी तब जी सकता है जब उसको थोड़ा सा जो दिखावे वाला लोभ है वो कम करेगा तब। बेसिकली लोभ की परिभाषा ये है कि आपकी जरूरत तो भगवान सबकी जरूरत पूरी करती है, कर रहे हैं, नीड्स पूरी कर रहे हैं, डिमांड्स किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। डिजायर समाप्त नहीं होंगी, नीड्स यस। तो अब निर्णय क्या निकालें? आज हम निर्णय क्या निकालें आज के इस विश्लेषण का, कि हमारे को अपना बचे हुए 6 घंटे शरीर को दे दो, अपने 8 घंटे 8.5-9 दे दो खाने पीने सोने के लिए नहाने के लिए दे दो, काम के लिए 8 घंटे आधा आधा घंटा बढ़ा के देना है तो दे दो, लेकिन आत्मा के चिंतन का समय, शरीर के स्वस्थ संबंधी कार्य का समय, केवल स्वस्थ के कार्य के समय में ये भी आता है क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए। जब आयुर्वेद के आचार्य ने ऐसे पूछा कि स्वस्थ कौन, बोला हित भुक मित भुक। उसने 3 शब्द कहा, हितकारी खाए, हित भुक जो खाए वो जो हित के लिए हो। कौन चार्वक था, कौन था आयुर्वेद का चार्वक, उसने कहा स्वस्थ कौन, तो उसका उत्तर मिला हित भुक खाए वो जो हितकारी हो। हितकारी का मतलब शरीर के हित के लिए हो। हित भुक मित भुक खाए जरूरत से कम खाए, 1/3 तो कम से कम स्टमक में। अब स्टमक ऐसी है जैसे आपकी मिक्सी, आपके घर में मिक्सी है ना, उसको फुल भर के फिर चला सकते हो? हाँ जी, मिक्सी को फुल भर के जलाओगे तो क्या होगा, गिरेगा ना सब कुछ। तो कितना कम उसमें डालते हो पता है? एक मार्क होती है, आधे से थोड़ा ऊपर कर सकते हो, 2/3 भरना है आधा। ये स्टमक में माल जाने के बाद इसमें भी ये घूमता है, मिक्सी है, और अगर भर दिया तो कुछ ऊपर डकारें आएंगी, कुछ पेट मेरी तरह बाहर आएगा। तो कहां जाएगा, अगर वो घूमेगा अंदर तो कहां जाएगा बेचारा। तो मित भुक का मतलब जरूरत से थोड़ा कम। असल में भूख आंखों की होती है, पेट की नहीं। और सबसे पता है ज्यादा परेशानी क्या है, बच गया इसका क्या करूं, अरे बच गया तो छोड़ दो, अंदर क्यों डाल रहे हो मुसीबत को। स्त्रियों में यह सबसे बड़ी बीमारी, इतना बच्चा चलो अंदर डाल दो। अरे बच्चे को फेंक दो भाई, किसी गरीब को दे दो। और तीसरा मैंने क्या बोला, हित भूख मित भूख और रित भूख, और वो भी ईमानदारी का कमाया हुआ खाओ। ये है चार वक्त का, वो जो आपकी कमाई हो वो अगर पसीने की है, खून पसीने की है, मेहनत की है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर किसी का गला काट के खा रहे हो तो फिर चिंता मन में रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी। हित भूख मित भूख और तो वो कमाई मेहनत की और ईमानदारी की होनी चाहिए। जब भी इस गलत रास्ते से आया हुआ पैसा घर में आया और उसको खाया तो परेशानी बढ़ेगी। तो स्वस्थ केवल आसन प्राणायाम स्वस्थ नहीं है, खाना पहला मुख्य चार्वक का सिद्धांत है। हित भूख रित भूख और मित भूख, ये मुख्य है। पहले हितकारी खाना खाओ, और हितकारी खाने में भी जो मां बनाती है वो खाना बच्चे के लिए हितकारी है, क्योंकि मां जब भोजन के ऊपर नजर डालती है तो उसके आंखों से बच्चे के लिए जो पौष्टिक प्रेम होता है वो उस खाने में जाता है। बाजार का खाना हित भूख नहीं है, बाजार का खाना हित भूख नहीं है, वो आपके हित के लिए नहीं है। मां जो बनाती है वो हित के लिए बनाती है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बनाती है, उसका प्रेम उसके अंदर समाया हुआ होता है। तो हित भूख मां, इसलिए भागवत में यशोदा मां जब स्वयं मंथन कर रही है दही का अपने 3 साल के बालक भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि रोज दूसरे के घर ये मक्खन अगर खाने जाता है इसका मतलब मक्खन बनाने वाली प्रेम से नहीं बनाती है, काम वाली काम करती है ना। आजकल सब घरों में भोजन कौन बनाता है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, हाँ अब तो खाने वाला क्या बनेंगे, मेड बनाएगा तो मेड बनेगी, इसमें कौन सी परेशानी। भाषा आपकी आपके लिए, मेड ने खाना बनाया तो हम मेड हो गए। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मां ने बनाया तो बेटा बनेगा, अब मेड ने बनाया तो मेड बनेगा। हरे कृष्ण। तो यशोदा तो रानी थी, हजारों दासियां थी, लेकिन फिर भी दही मंथन करने स्वयं बैठी, दूध भी स्वयं ने गर्म किया, जमाया रात को, दही बनाया और मंथन करने बैठी। बड़ा परिश्रम का काम था। तो मां बनाती है बच्चे के लिए तो उसमें उसका प्रेम, उसकी भावनाएं और बच्चे के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। और काम करके 80% मंथन कर लिया था यशोदा ने, 80% ऊपर झाग आ गई थी, वो अब बस सिर्फ कंडेंस होके बटर बनने वाली थी, और कृष्ण सामने आगे खड़ा हो गया, मंथनी को पकड़ लिया, काम रुक गया। मां ने बच्चे की ओर देखा, बच्चा मां की गोद में चढ़ा के उधर दूध पीऊंगा, और मां ने स्तनपान कराना शुरू किया, काम को रोक दिया, जानते हुए कि फिर दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब मक्खन निकलेगा। लेकिन बच्चा भूखा है और मांग रहा है तो सब काम छोड़ के पहले इसको खिलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा मान है, यशोदा मान है, आने वाली दुनिया की सब माताओं को दी है। कैसा भी बड़े से बड़ा मुख्य काम आपके हाथ में हो, लेकिन बच्चा कहे कि मुझे भूख लगी है, तो उसको, उसने तो अपने हृदय का अमृत दूध पिलाना शुरू किया, कम से कम आप ताजा सा रोटी प्रेम से परोस के खिलाओ बच्चे को। एक छोटी सी शिक्षा भागवत की है सब माताओं के लिए, लेकिन आज के वातावरण में इसको दूसरी एंगल से देखो। माता टीवी देख रही है, सीरियल बहुत इंटरेस्ट का है, बच्चा कहता है भूख लगी है, क्या कहेगी माँ बोलो? क्या कहेगी? हाँ, चिप्स का पैकेट दे देगी। और क्या चीज, चिप्स कैसे बनता है? चिप्स कैसे बनता है? फ्राई होता है ना, तो उसको फ्राई दोगे तो आपको भी फ्राई करेगा समय आने के ऊपर। फिर ये नहीं कहना कि हमें क्यों रोज फ्राई करता है। और क्या कहोगे, और क्या दोगे, दूसरा क्या, दूसरी माता क्या कहती है? एक ने तो चिप्स दे दिया, दूसरी क्या कहती है बोलिए? सीरियल खत्म होने के बाद तो वो जब आप बड़ी उम्र में बीमार पड़े हो तब वो कहेगा सीरियल खत्म होने के बाद आपका इलाज कराऊंगा। सीरियल खत्म होने, और तीसरी माँ क्या कहेगी? बेटा नहीं, खुद बनाओ, सामने फ्रिज पड़ी है, बेटा देखो कुछ अंदर से निकालो और खा लो, ये आजकल सबसे अच्छा साधन है। तो वो बच्चा फ्रिज को देखेगा, अंदर से ठंडापन देखेगा, बोला माँ बहुत ठंडा काम से व्यवहार कर रही है, अब हम भी आगे ठंडा ही रहेंगे। उत्साहीनता अपने आप में आ जाए। और माँ तो मक्खन निकाल रही थी मेहनत करके, यशोदा। आजकल माताएं मक्खन निकालती हैं कि कैसे बच्चों को क्या खिलाती हैं सुबह सुबह? वो बटर को क्या करती हैं? ब्रेड के ऊपर। तो बच्चा, कृष्ण ने यशोदा को देखा मक्खन निकालते हुए, मेरी माँ परिश्रम कर रही है। तो उसने बोला जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं परिश्रम करके माँ की सेवा करूंगा। अब का बच्चा माँ को देखता है कि ब्रेड के ऊपर बटर लगा रही है, बोला मैं भी बड़ा होकर अच्छी तरह से बटर लगाऊंगा, मेरी माँ चिंता मत कर। जो देखेगा वही करेगा ना। परिश्रम करते हुए माँ को देखा तो उसने कहा मैं भी मक्खन लगा, माँ इतना मेरे लिए पसीना माँ को हो गया, बाल सारे पसीने वाले हो गए, फूल गिर गए, इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए मक्खन निकालने के, मैं बड़ा होके बहुत बड़ी सेवा करूंगा मेरी माँ की। अब क्या देखता है बेचारा? हरे कृष्णा, ये हित भूख की बात कर रहा हूं मैं, स्वस्थ के लिए। और वैसे भी प्रभुपाद ने लिखा है कि स्त्री अगर सुबह मंथन करे तो इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप में। एक तो घर में मक्खन अपना घी हो जाएगा, दही अपना हो जाएगा, छाछ अपनी हो जाएगी ताजा, और माँ का स्वास्थ्य इतना ज्यादा सुंदर हो जाएगा कि शरीर का ऊपर का हिस्सा उसका सडोल रहेगा सदा। नेचर क्योर में इलाज के लिए जाते हैं कभी बेंगलोर, तो पुरुषों को कुछ एक्सरसाइज कराते हैं और लेडीज का अलग सेक्शन है। तो हमने पूछा, हमारे एक फ्रेंड कपल गया था साथ, तो माताजी को, माता आपको क्या एक्सरसाइज कराते हैं? बोला हमको कहते हैं 15 मिनट चक्की पीसो, चक्की रखी हुई है, बोलते ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्वास्थ्य के लिए। मैंने बोला पैसा दे के या चक्की पीस रही है, घर में पीसा होता तो यहां आती क्यों? 1000 रुपया रोज का दे के और यहां चक्की पीस रही हो, घर में ही पीस ली होती तो यहां आना ही नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। तो आज का हम क्या संदेश ले जाएं कि आत्मा के चिंतन को कभी भूलना नहीं है, तो नहीं तो संतुष्टि और शांति चली जाएगी। संतुष्टि और शांति जीवन में चाहते हो तो आध्यात्मिक चिंतन को कभी भी मत भूलना है, कभी उसमें एब्सेंट मार्क होनी नहीं चाहिए 100%। उसमें ना हॉलीडे है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। आत्मचिंतन में वो निश्चित रूप से निर्धारित समय देकर रोज करना चाहिए। अगर आप जीवन में बैलेंस, संतुष्ट, सुखी, सुरक्षित रहना चाहते हो तो आगे की दुनिया की बात नहीं कह रहा हूं, इस करने से आगे भी भविष्य उज्जवल होगा वो भी नहीं कह रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं सिर्फ। और स्वस्थ संबंधी भोजन से लेकर थोड़ा स्वस्थ शरीर को चलाने का अभ्यास निरंतर करोगे तो स्वस्थ रहोगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि आपकी थोड़ी कमाई हो सकता है कम हो, लेकिन आपके खर्चे कम हो जाएंगे। मानो कमाई कम थोड़ी हुई तो खर्चे कम हो जाएंगे, बीमारी कम होगी तो दवाई का खर्चा कम हो जाएगा। अगर शांति घर में है तो बाहर खाने की जरूरत नहीं है, घर में खाओगे तो खर्चा कम हो जाएगा। घर में खाना पकाने का खर्चा ज्यादा है कि बाहर खाने का ज्यादा खर्चा है, आपका क्या विचार है? बाहर का खर्चा ज्यादा है ना, तो घर में खाओगे तो खर्चा कम हो जाएगा, सीधा सा बात फार्मूला है कि नहीं? तो आपका बैलेंस शीट में कोई घाटा नहीं होगा, बैलेंस शीट में कोई नुकसान नहीं होगा, दिमाग में सिर्फ थोड़ी सी परेशानी होगी कि लास्ट से अभी थोड़ा कम है लेकिन पहले से मैं खुश हूं। और बच्चों को, माताएं और स्त्रियों को, पुरुष और बच्चों को क्वालिटी टाइम दो। और ये क्वालिटी टाइम अगर आत्मा का जो चिंतन है दोनों साथ बैठ के करो तो सबसे अच्छा, तो दुसंग भी मिल गया और दोनों काम हो गए। और आपके लिए, पुरुषों के लिए सारा दिन जूझने के बाद, बिजनेस तो युद्ध के बराबर है, सुबह से शाम तक समझो जैसे बाण चलाने होते हैं ना और अपने को बचाना होता है, ऐसा बिजनेस है। ये तो युद्ध भूमि की तरह खड़े होकर करना है, दिमाग तो ऐसे चलता है तेज। घर जब आते हैं ये तो ये चाहते हैं अब सुख शांति, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा सारा दिन, मैं बाहर बहुत परिश्रम करके आया, अब शांति मिलनी चाहिए। और घर में आने के बाद फिर युद्ध शुरू हो तो क्या हाल होगा? हाँ, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि घर का माहौल शांति, ये सुरक्षा पुरुष के लिए घर सुरक्षा है, शांति से आश्रम है, गृहस्थ को आश्रम का है जहां विश्राम मिले। तो घर का वातावरण ऐसा रखना चाहिए, थका हारा सारे दिन का परिश्रम किया हुआ पुरुष घर में आए तो अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करे और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको वातावरण मिले, ये घर ऐसा बनना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो डिस्टर्ब आदमी जो है, पहले ही डिस्टर्ब बाहर से तो सभी परेशान होके आते हैं, और घर में ही परेशानी होगी तो फिर घर बिगड़ जाएगा। और उसका प्रभाव भले स्त्री और पुरुष थोड़ा सा कड़वाहट में बोले लेकिन बच्चों के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे देखेंगे उसको ना तो उसके दिमाग में छोटे छोटे स्क्रेच पड़ जाएंगे, वो हील नहीं कभी होंगे। इसलिए आध्यात्मिकता अति आवश्यक है हमारे शांतिपूर्वक संतुष्ट वाले कंटेंट जीवन के लिए, और इस एजुकेशन की आवश्यकता है, चाहे वो अडल्ट एजुकेशन ही क्यों ना हो, जैसे आज हम कर रहे हैं। बच्चों को देने का समय हम अपने घर में देना शुरू कर दें, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी जरूरत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैनॉट इग्नोर इट। इसको कल के ऊपर मत रखिए, ये आपकी जरूरत है, नहीं तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो हमें अपना आध्यात्मिक जीवन सरलता से शुरू करना चाहिए। और परिवार में संगठित रूप से शुरू करना चाहिए। खान पान में स्वास्थ्य संबंधी जागृति लानी चाहिए और कुछ थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम भी जरूरी है। जो रेगुलर घर का काम है वो माताजी के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, अपने आप में व्यायाम है, लेकिन सबको हमने इतना सुविधाजनक कर दिया है कि अब कुछ भी नहीं करने का। वो टाइम कहां जाता है, सारा टाइम वो टीवी के ऊपर जाता है। जो परिश्रम से हाथ से कपड़े धोते तो कम से कम थोड़े हाथ हिलते, कपड़े बेचारी मशीन धोती है और आप मशीन के सामने मशीन बन के बैठ जाती हो। ये जितनी सुविधाएं हैं इन्होंने हमको स्वस्थ, इन्होंने हमको सुस्त कर दिया है, लेजी बनाया है सिर्फ। आप बताइए कि ऐसे कपड़े धोने से कुछ एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती है? लेकिन हम नहीं धोते हैं, क्यों? मशीन धोएगी? थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद आपका। कोई किसी का प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? एक घंटे के नजदीक हम पहुंच रहे हैं। कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है? बोलिए। आत्मा है तब हार्ट बीट चल रही है, आत्मा निकल जाएगी तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी। वैसे आत्मा का निवास स्थान दिल है, जिसको वो चलाता है और उसके द्वारा सारे शरीर को खून पहुंचता है। आत्मा के निकलने जाने के बाद दिल का धड़कन बंद हो जाता है, शरीर में खून पहुंचना बंद हो जाता है और शरीर समाप्त हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही है कि आत्मा के निवास, जो आत्मा शरीर में दिल में रहती है। और हार्ट बीट सबसे पहले बच्चे की शुरू होती है, मां के गर्भ में पहले धड़कन शुरू होती है, बाकी सब इंद्रियां बाद में बनती हैं।